पहले तीन कालों की अवधि कितनी थी? एक कोड़ा कोड़ी सागर, और चौथे काल की अवधि दो कोड़ा कोड़ी सागर। अब पांचवा काल जो आएगा मध्यम भोग भूमि का होगा, उसके प्रारंभ में एक पल्लायु एक कोस ऊंचाई, अंत में दो पल्लायु दो कोस ऊंचाई, और उसकी जो अवधि है वो तीन कोड़ा कोड़ी सागर। आ गया? तो अभी कितने सागर हो गए कुल? पांच काल में कितने कोड़ा कोड़ी सागर हो गए? एक, दो और तीन कोड़ा कोड़ी, छह कोड़ा कोड़ी सागर अवधि हो गई पूरी, और है दस कोड़ा कोड़ी सागर का पूरा अवसर्पिणी उत्सर्पिणी। तो अंतिम जो काल आएगा छठा काल उत्सर्पिणी का, वो छठा काल, इसका पांचवें काल का नाम है सुषमा और छठे का नाम है सुषमा सुषमा, और उसकी अवधि चार कोड़ा कोड़ी सागर की है। उसके प्रारंभ में वहाँ के मनुष्य तिरंचों की आयु कितनी है? दो पल्ले, क्योंकि इसमें दो पल्ले हो जाती है अंत में, पांचवें काल के अंत में मध्यम भोग भूमि में, और छठे काल के अंत में तीन पल्ले की आयु रहती है और ऊंचाई तीन कोस हो जाती है। आप सोचेंगे कि तीन कोस ऊंचाई में कैसे, क्या आज की हड्डियों में तो इतना ऊंचा शरीर ठहर नहीं सकता, इतना वजन कैसे झेल सकती है हड्डियाँ, मुश्किल है। लेकिन नहीं, उस समय वज्र ऋषभ नाराज संगनन होता है। तीनों भोग भूमियों में नियम से पुरुष हो या स्त्री हो एक ही संगनन होता है, वज्र वृषभ नाराज। वैसे पुरुष शरीर के साथ छह संगनन हो सकते हैं, स्त्री शरीर के साथ केवल चार संगनन होते हैं। मनुष्य पर्याय की बात कर रहे हैं हम, तो वो कौन से हैं? पुरुष के साथ तो छह संगनन हो सकते हैं। संगनन यानी हड्डियों की मजबूती, हड्डियों का बंधन, अस्थि बंधन को संगनन बोलते हैं। तो पूरे ऊपर वाले वज्र ऋषभ नाराज संगनन, वज्र नाराज संगनन, नाराज संगनन, अर्ध नाराज संगनन, कीलिका संगनन और असंप्राप्त श्रिपाटिका संगनन, ऐसे छह संगनन हो सकते हैं। और नारियों में भोग भूमि की अपेक्षा से एक वज्र ऋषभ नाराज संगनन बनेगा, और कर्म भूमि में अंतिम तिग संघटनम अथित्य कम भूमि महिलाणम, घुमटसार कर्मकांड में गाथा आती है, आदिम तिग संघटनम नथित्य जिने ही निदिठम। शुरू के तीन संगनन स्त्रियों में जिनेन्द्र भगवान ने नहीं बताए हैं कर्म भूमि में, लेकिन अंत के तीन संगनन कर्म भूमि की महिलाओं में पाए जाते हैं, ऐसा घुमटसार कर्मकांड का उल्लेख है। मतलब ये हुआ कि अंत के तीन होंगे और फिर भोग भूमि में एक संगनन होगा, कुल संगनन कितने बने स्त्री पर्याय में? चार संगनन बने। और वज्र ऋषभ नाराज संगनन के धारक अगर कर्म भूमिया पुरुष हों, मुनि मुद्रा धारण करके शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर लें, वो क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर, तो वो नियम से तद्भव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वज्र ऋषभ नाराज संगनन जिनके पास हो वो सारे के सारे मोक्षगामी होते हों, क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज संगनन सातवीं पृथ्वी जाने के लिए भी अनिवार्य है, उसके बिना सातवें नरक में कोई नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वज्र ऋषभ नाराज संगनन वाले उतना पाप भी कमा सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि जाने के लिए भी नियम से वज्र ऋषभ नाराज संगनन ही होना चाहिए, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। अब सुकुमाल स्वामी शरीर से कोमल थे, हड्डियों से मजबूत थे क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि गए ना, तो सर्वार्थ सिद्धि जाने के लिए कौन सा संगनन? वज्र ऋषभ नाराज संगनन। तो शरीर से कोमल थे लेकिन अस्थियां उनकी वही थी, वज्र ऋषभ नाराज संगनन। तो समझ में आ गया पूरा काल उत्सर्पिणी काल। एक बार दोहरा लो, पहला काल कौन सा है? दुष्यमा दुष्यमा, उसको अति दुष्यमा बोल सकते हैं। अति दुखमा बोल लो आप सरल उच्चारण के हिसाब से, विसर्ग के उच्चारण में थोड़ी मेहनत होगी। फिर दूसरा काल दुष्यमा, तीसरा दुष्यमा सुषमा, फिर चौथा चौथा सुषमा दुखमा दुष्यमा, और पांचवा अकेला सुषमा, और छठा सुषमा सुषमा। इस प्रकार ये छह काल हो गए। और अवसर पीणी में इसका विपरीत क्रम होता है, मिरर इमेज जैसे आईने में आप देखो ए लिख करके देखो, या फिर और कोई अक्षर लिख दो, अ लिखोगे तो वहां ऐसा उल्टा अ दिखाई देगा, बस वैसा ही ये क्रम काल का भी चलता है। अभी अपन कौन से काल में है? अवसर पीणी में। तो अवसर पीणी में क्या होगा, जो पहला काल था वो उत्सर पीणी के अंतिम काल जैसा ही था, माने उसका नाम क्या रहा, सुषमा सुषमा। उसके प्रारंभ में आयु ऊंचाई कितनी थी, तीन पल्ले आयु तीन कोस ऊंचाई। ये आयु और ऊंचाई याद रखना कठिन नहीं है क्योंकि एक ही गिनती है, तीन कोस ऊंचाई होगी तो तीन पल्ले आयु होगी, दो कोस ऊंचाई होगी तो दो पल्ले आयु होगी, एक कोस ऊंचाई होगी तो एक पल्ले आयु होगी। फिर वो घटते 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 चार कोड़ा कोड़ी सागर तक चलता है वो उत्तम भोग भूमि का काल, फिर तीन कोड़ा कोड़ी तक मध्यम भोग भूमि, और दो कोड़ा कोड़ी तक जगन्य भोग भूमि का काल चलता है। लेकिन जगन्य भोग भूमि के काल के अंत अंत में जब पल्ले का असंख्यातवा भाग शेष रह जाता है, या फिर पल्ले का आठवां भाग शेष रह जाता है, तब 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। उन कुलकरों को मनु भी कहा जाता है, और उनमें अंतिम कुलकर इस बार नाभिराय थे। और नाभिराय जब उत्पन्न हुए थे तब उनका जो कल्पवृक्ष, एकमात्र कल्पवृक्ष जो उस समय बाकी रह गया था, क्योंकि वो काल बदल रहा था, कर्म भूमि आने वाली थी, तो एक कल्पवृक्ष बाकी रह गया, तो वो कल्पवृक्ष नाभिराय के महल के रूप में परिणत हो गया था, बाकी कल्पवृक्ष गायब हो गए थे। और इसके पश्चात फिर वो क्रम चलता रहा, फिर ऋषभदेव महाराज हुए और सब आगे का क्रम चला। लेकिन हुंडाव सर्पिणी काल के दोष से ऋषभदेव महाराज तीसरे काल में मोक्ष चले गए, और कुछ तीर्थंकरों ने चक्रवर्ती पद को भी धारण कर लिया, और एक तीर्थंकर नारायण भी बने और तीर्थंकर भी बने। इस प्रकार पांच शला का पुरुष 63 में से कम हो गए, तो तिलोय पंडित्य में बताया कि हुंडाव सर्पिणी काल में 58 शला का पुरुष होते हैं। ये जानकारी याद रखने योग्य है, कैसेट तो बनी रही है लेकिन सबको ख्याल में रहे ऐसी जानकारी है कि हुंडाव सर्पिणी काल में ऐसे ये कमी आ गई। 63 शला का पुरुषों में से आदिनाथ भगवान तीसरे काल में मोक्ष चले गए, तो अब बचे कितने, 62। अब 62 में से अजितनाथ भगवान, फिर शंभवनाथ भगवान आदि सब तीर्थंकर बनते रहे, लेकिन शांति कुंतु अरनाथ भगवान ने 12 चक्रवर्तियों में से 3 चक्रवर्तियों का पद इनने प्राप्त कर लिया, पंचम षष्ठ और सप्तम चक्रवर्ती ये हो गए। तो देखो जीव कम हुए कि नहीं, 63 जीवों को 63 शला का पुरुष होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या हो गया, 3 जीव चक्रवर्ती भी बन गए और तीर्थंकर भी बन गए, तो 6 में से 3 कम हो गए। और एक आदिनाथ भगवान पहले ही कम हो चुके थे क्योंकि वो चौथे काल में हुए ही नहीं, 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी थे तीसरे काल को, तब वो कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए थे। अब जो प्रथम नारायण के जीव थे, त्रिपृष्ठ नारायण, श्रेयोनाथ भगवान के समय 11वें तीर्थंकर के काल में हुए हैं प्रथम नारायण त्रिपृष्ठ, उन्हीं का जीव कालांतर में आगे भविष्य में अंतिम तीर्थंकर के पद को प्राप्त हो गया। महावीर स्वामी जो थे वो प्रथम नारायण के जीव हैं। इसलिए शलाका पुरुषों में से 9 नारायण होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, तो अब 24वें तीर्थंकर ने एक नारायण का पद धारण कर लिया, तो फिर एक वो कम हो गया। तो इस तरह कुल 5 जीव चतुर्थ काल में घट जाने के कारण शलाका पुरुषों की गिनती इस हुंडाव सर्पिणी के दोष से 63 न होकर के 58 हो गई, ये एक जानकारी की बात थी। तो क्रम बिल्कुल वैसे ही चलता है, लेकिन उल्टा क्रम रहता है। वहां जिस क्रम से वृद्धि हुई थी, यहां उस क्रम से हानि होगी। तो पहला काल सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, वो सु से चालू होंगे तीन, और फिर उसके आगे दू से चालू होने वाले तीन काल हैं। तो जो अभी चौथा काल बीता है उसका नाम क्या होगा अब आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अब हम चम्मच में नहीं कराएंगे भोजन आपको। बोलो क्या नाम है? पहले तीन काल तो सु से चालू हो ही चुके थे, अब बचे तीन काल जो है वो दू से प्रारंभ हो गए, तो दुखमा सुखमा नाम होगा। और ये नाम सचमुच सार्थक नाम है उस काल का, तीर्थंकरों के काल का नाम जो दुखमा सुखमा है बिल्कुल सही इसलिए लगता है क्योंकि संसार में आए तो दुख है संसार में, तो और अंत में जो सच्चा सुख है वो उसी काल में प्राप्त होता है, चौथे काल में, तीर्थंकरों की कृपा से। तो वो सुखमा, वैसे तो नाम की व्युत्पत्ति उस अपेक्षा से नहीं है, जो वास्तव में उस शब्द जो है दुह क्षमा, समा का अर्थ होता है वर्ष, तो दुह क्षमा का अर्थ होता है जिन वर्षों में दुख हो, हर साल दुख, इस दुखमा नाम के काल में हर साल दुख ही दुख है, कोई ऐसा साल निकला किसी का कि कभी दुख ना हुआ साल भर एक बार भी? कभी कभी अपन कहते हैं कि देखो 5 साल निकल गए बड़े सुख शांति के साथ, लेकिन नहीं, कोई ना कोई बीच में ऐसे समाचार तो मिले आपको जिससे मन दुखी हुआ है, कोई ना कोई समाचार, ऐसा हो नहीं सकता कि कभी दुख ना हो दुखमा काल में। क्षमा का अर्थ होता है वर्ष, तो दुह क्षमा याने अनिष्ट है वर्ष जिसमें, और सुक्षमा का अर्थ सुंदर है वर्ष जिसमें। तो इस प्रकार वो काल की व्युत्पत्ति हो जाती है शब्द की अपेक्षा। तो चौथा काल हो गया दुष्मा सुषमा, और ये पांचवा काल अपना जो काल चालू है इसका नाम तो सब लोग जानते हैं हिंदू मत के अनुसार कली काल, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार इसका नाम क्या है? दुष्मा, और हिंदी में इसको दुखमा भी बोलते हैं। और अगला काल कौन सा है? दुष्मा दुष्मा, अति दुखमा या दुखमा दुखमा। इस प्रकार पूरा क्रम वैसा का वैसे ही रहता है। अभी अपन कितने साल के काल में चल रहे हैं? दुखमा काल कितने साल का है? 21,000 वर्ष। और इसके बाद जो अति दुष्मा आएगा वो भी 21,000 वर्ष का होगा। तो इतना सरल इसका जो प्ररूपण है, आज हमारे ख्याल से कुछ लोगों को ये बातें स्मृति में बैठ गई हो, बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों ने ज़्यादा इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया कि भाई ये सब बात अपने बस की नहीं है, चलो भाई सुन लो, टाइम बैठे हैं तो सुन ही लो, ऐसा सोचकर जिनने सुना होगा तो उनकी स्मृति में जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि स्मृति जो होती है वो एकदम थोड़ा शार्प होकर के सुनने पर काम करती है। आप अगर ऐसे नींद में सुनो तो फिर सब भूल जाते हैं। तो इस प्रकार ये पूरे काल का वर्णन हो गया। अब इसके आगे काल परिवर्तन का वर्णन सुन लीजिए, कितना डरावना है ये परिवर्तन। कोई जीव किसी भी आयु के साथ उत्सर्पिणी के पहले काल में जन्मा, फिर आगे कभी किसी अन्य उत्सर्पिणी में दूसरे काल में जन्मा, दूसरे काल में मतलब दूसरे समय में, यहां आप समय के हिसाब से चलना है, क्योंकि उत्सर्पिणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की है और एक सागर में असंख्यात समय होते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर में 10 कोड़ा कोड़ी बार गुना कर दो असंख्यात समयों का, उतना लंबा काल। और एक सागर की अवधि हम आपको समझा दें, आप लोग थोड़ा श्रद्धा के साथ सुनना, और चक्कर आ जाए तो थोड़ा संभाल लेना अपने आप को। एक महायोजन प्रमाण गड्ढा जो उतना ही गहरा और चौड़ा है, महायोजन का अर्थ होता है 2000 योजन अथवा 500 योजन कहना चाहिए, 2000 कोस, 500 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 500 योजन गहरा, समझ में आ गया ना? तो उस गड्ढे में अपन भोग भूमि के जो भेड़ 7 दिन के होते हैं, भेड़ यानी घेंटा, उनके शरीर पर बारीक रूएं आने लग जाते हैं। उन बारीक रूओं को कैंची से या किसी भी यंत्र से विभाजित करते जाइए, और जब उस बाल का विभाजन न हो सके, उन छोटे बारीक रूओं के टुकड़ों से उस गड्ढे को भर देना। ये सिर्फ काल्पनिक है, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं है, कोई समझने का दूसरा रास्ता नहीं है कि कितना बड़ा काल है उस सागर का। तो उन बारीक रूओं से उस गड्ढे को भर दीजिए, और भर करके उसको प्रेस करना है। प्रेस करने का मतलब, ऐसे भर दोगे तो फिर वो फैले रहेंगे बाल, तो फिर जल्दी भर जाएगा गड्ढा। लेकिन प्रेस करते जाओ, प्रेस करते जाओ, फिर भरते जाओ, प्रेस प्रेस करते जाओ। जब वो गड्ढा पूरा भर जाए, और फिर प्रेस करने के बाद प्रेस न हो, और फिर उसके बाद में ऐसा उल्लेख है कि यदि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो घोड़ों की टाप सुनाई पड़े, खटाक खटाक खटाक, इतना टाइट उसको प्रेस कर दिया, वो गड्ढा पूरा भर गया। अब क्या होगा, उस गड्ढे को पल्ले कहते हैं। अब जो परिमाण निकाल रहे हैं काल का, उसका वर्णन सुन लीजिए। उसमें से एक एक बाल के खंड को, रोम खंड को बाहर निकालना है, और एक बाल को निकालने के बाद दूसरा बाल जब निकालोगे तो कम से कम 100 वर्ष के बाद निकालना है, बीच में नहीं निकालना। आप डरो मत, कुछ नहीं, ये सिर्फ समझने की बात है, काल का परिमाण जानने के लिए। आप ये मत सोचो कि हम तो मर जाएंगे उतने देर, आपके बारे में कुछ कह ही नहीं रहे तो 100-100 वर्ष में जब एक एक रोमखंड निकालते हैं, और जितने समय में वो गड्ढा खाली होता है उतना काल कहलाता है एक व्यवहार पल्ले। असंख्यात व्यवहार पल्लों का एक उद्धार पल्ले होता है, असंख्यात उद्धार पल्लों का एक अद्धा पल्ले होता है। ये अद्धा पल्ले जो है यहां की आयु है भोग भूमि की। जो एक पल्ले आयु बोलते हैं ना अपन, वो अद्धा पल्लोपम, इसका पूरा नाम है अद्धा पल्लोपम, इतनी आयु है। और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागरों की एक अवसर्पिणी अथवा उत्सर्पिणी होती है। अब इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना लंबा समय है वो, नहीं लगा सकते, फिर भी नहीं लगा सकते अनुमान कि कितना लंबा समय है वो। कितना अपनी बुद्धि कहाँ तक जाएगी बताओ आप, एक सागर तक तो जा नहीं पाती, एक पल्ले तक तो दिमाग चकरा जाता है। अब विचार करो, जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे हैं कि इतने लंबे समय में वो उत्सर्पिणी के प्रथम समय में जन्मा और अपनी आयु जीकर समाप्त हो गया, फिर कभी अन्य अवसर्पिणी में या अन्य उत्सर्पिणी के दूसरे समय में जब जन्मेगा तो उसको उसमें काउंट करेंगे। उसके बीच में जो असंख्यात भाव हो गए वो भी उस काल परिवर्तन में, भाव भ्रमण में शामिल होंगे। फिर कभी किसी और उत्सर्पिणी में तीसरे समय में जन्म लेगा, फिर किसी में चौथे समय में, इस प्रकार एक एक समय में जन्म लेता हुआ क्रम से जब वो उत्सर्पिणी के अंतिम समय में जन्म लेगा, तब उत्सर्पिणी काल संबंधी जन्म का जो परिवर्तन है वो पूर्ण हुआ। और इसके बाद अवसर्पिणी के प्रथम समय में जन्म लेते हुए जो पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर के एक एक समय हैं, उनमें क्रम से, जैसे मान लो अभी इस अवसर्पिणी में प्रथम समय में जन्मा और किसी और अवसर्पिणी में चौथे समय में जन्मा, तो उसको इसमें नहीं जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो क्रम टूट गया है। लेकिन काल पूरा जुड़ेगा उसमें और भाव जुड़ेंगे, पर प्रोग्रेस नहीं मानी जाएगी। प्रोग्रेस का मतलब प्रगति नहीं होगी उसमें। काल परिवर्तन में प्रगति कब होगी, जब किसी, हो सकता है असंख्यात अवसर्पिणियों के बाद फिर दूसरी उसमें दूसरे समय में जन्म ले, ऐसा हो सकता है। तो फिर उसको दूसरे समय में, जिस समय जन्म लिया उसने, तो फिर काल परिवर्तन में एक समय की प्रगति हो गई, और जितना बीच का काल जुड़ गया वो तो जुड़ ही गया उसमें, उसको तो घटाने का सवाल ही नहीं है। फिर इसके बाद तीसरे समय में जब जन्म होगा तो फिर उसमें और प्रगति हुई। ऐसा करते करते एक एक समय प्रगति करता हुआ वो कब पूरा करता होगा कल्पना करो आप, कितना लंबा परिवर्तन है ये। और इसी प्रकार फिर उत्सर्पिणी के प्रथम समय में मरण, दूसरे समय में मरण, तीसरे में मरण, इस प्रकार मरण का परिवर्तन भी जब पूरा करेगा, क्योंकि जन्म और मरण रूप संसार है, तो सब स्थितियों में जाकर वो जब इस प्रकार पूरा करता है वो, जन्मदि मरदि सव्येषु कालेषु, जन्म और मरण लेता सब कालों में, मतलब सीधा सीधा ये अर्थ हुआ कि उत्सर्पिणी के प्रत्येक समय में क्रम से एक एक समय बढ़ाता हुआ जन्म लेता है, क्रम से एक एक समय बढ़ाता हुआ मरण को प्राप्त होता है, फिर अवसर्पिणी में क्रम से जन्म और मरण को प्राप्त होता है। जब ये क्रम पूरा होता है तो जितना समय निकल जाता है और जितने भव वो धारण कर लेता है, जितनी योनियों में भटक लेता है, उसको काल परिवर्तन कहते हैं। क्षेत्र परिवर्तन में तो एक एक प्रदेश बढ़ाता गया, काल परिवर्तन में ये पूरे 20 कोड़ा कोड़ी सागर के एक एक समय में उसने जन्म और मरण को प्राप्त किया, वो भी क्रम से। बीच में कई बार क्रम टूटा तो फिर उस परिवर्तन में प्रगति नहीं गिनी गई, लेकिन काल पूरा सम्मिलित हो गया उसमें। कितना भयंकर भटकता होगा ये जीव। एक बार जीव को सम्यक दर्शन हो जाए तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन में वो पार हो जाता है, और सम्यक दर्शन न हो तो फिर पुद्गल द्रव्य परिवर्तन तो छोड़ दो आप, क्षेत्र परिवर्तन करता है, काल परिवर्तन करता है, और फिर भाव परिवर्तन इससे भी विशाल है, उसको आगे बतलाएंगे। एक गाथा है अंत में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने दी है 12 अणुवेखा में, ओव सब पेणी अव सब पेणी समयावली आसु निरवसे सासु। वो टीका में है, कार्तिक अनुप्रेक्षा गाथा में नहीं है, टीका में है। जादो मुदो य बहुसो हिंडन्तो काल संसारे, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के प्रत्येक समय और आवलियों में यह जीव काल संसार में भटकते हुए बहुत बार जन्म और मरण को प्राप्त हो चुका है, बहुत बार। यानी एक काल परिवर्तन ही कितना भारी है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि हे जीव, तूने बहुत बार काल परिवर्तन किया है, अब भी तुझे थकान का अनुभव नहीं हो रहा है, तू और भटकना चाह रहा है संसार में, तू विषय कषायों को नहीं छोड़ रहा है, इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तुझे और भटकने की इच्छा है। तुझे इतने भयानक संसार से भी डर नहीं लगता। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में एक गाथा आती है कि जिनको ऐसे प्रचंड संसार से भी भय नहीं लगता वो साहसी जीव है, पक्के निडर, डटे हुए हैं संसार में, बिल्कुल उनको डरे नहीं है संसार में, भ्रमण से किंचित भी भय नहीं है। तो इस संसार भ्रमण का ये तीसरा भ्रमण था। द्रव्य भ्रमण अपन ने सुन लिया, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन सुना। द्रव्य परिवर्तन में ही तो दिमाग चकरा रहा था, वो पीपल के पेड़ का दृष्टांत याद करो, कहां से वो परमाणु वापस आएंगे और वापस उसी प्रकार का आकार बनेगा, सोचो। जो धुआं और राख बनकर के इधर उधर बिखर गए हैं प्रकृति में, लेकिन फिर भी कालांतर में बहुत बार वो परमाणु इधर उधर पर्याय बदलते बदलते फिर वापस उस पर्याय में आ जाए, कितना समय लग जाता है, कितने युग बीत जाते हैं, कितने कल्प काल निकल जाते हैं, तब जाकर के वो स्थिति बन सकती है। फिर क्षेत्र परिवर्तन कितना भयंकर था कि सबसे छोटा आकार धारण करके एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए उत्कृष्ट अवगाहना माने सबसे बड़ा आकार शरीर का धारण कर लिया, स्वक्षेत्र परिवर्तन। फिर लोक के एक एक प्रदेश पर जन्म और मरण को प्राप्त हो गया, पर क्षेत्र परिवर्तन कितना समय लग जाता है। फिर काल परिवर्तन में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल का इतना बड़ा व्याख्यान सुनने के बाद उसके प्रत्येक समय में जन्म और मरण को क्रम से प्राप्त करना है। बीच में क्रम टूट रहा है तो समय तो उसमें गिना जा रहा है, लेकिन उस परिवर्तन में आगे प्रगति नहीं हो रही है, मान लो तीसरे समय में किसी का जन्म मरण हो गया है, अब जब तक वो चौथे समय में अगली उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी में, अब अगली कब आएगी भगवान जाने। हो सकता है बीच के असंख्यात उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी उस समय पर आकर के जन्म मरण को प्राप्त न कर पाए वो। तो इतने लंबे भ्रमण के बाद वैसे देखा जाए तो अगर जिनवाणी पर श्रद्धा हो और इस पर अपन चिंतन करें कि इतना मैं भटक चुका हूँ संसार में, वो तो अपन सब भूल भाल गए हैं। अभी अपने को लग रहा है कि सब नया नया है, देखो अभी तो मेरी उम्र कितनी है, अभी तो बाल भी पूरे सफ़ेद नहीं हुए, ये सब सोच करके अपन बिल्कुल इसमें फिर संसार में विषयों में कषायों में चले जाते। लेकिन अगर ये स्मरण करो, ये अगर सिर्फ विचार करो कि जिनेंद्र भगवान ने कहा कि हे जीव तूने इतना लंबा भ्रमण किया है, क्या बाकी रह गया तेरे लिए, सब कुछ तूने प्राप्त कर लिया है, कुछ भी नहीं बचा संसार में, सब कुछ तो कर चुका है तू, अब और क्या नया करना चाहता है तू। नया सिर्फ एक है, मोक्ष का मार्ग। संसार मार्ग बहुत पुराना हो गया, बिल्कुल घिस पिट गया पूरा, तेरे चलते चलते तेरे दाग भी तेरे पैर से घिस करके समाप्त हो गए, इतना भटक चुका तू संसार में। कितनी बार यही आकार इन्हीं परमाणुओं से अपन ने प्राप्त किया, जितने द्रव्य परिवर्तन किए हैं तो उतने वैसे आकार अपन कर चुके हैं, कितनी बार क्षेत्र परिवर्तन, इसी अवगाहना में कितनी अनंतों बार ये जीव आ चुका है इस अवगाहना में। और काल परिवर्तन, अवसर्पिणी काल के इस पंचम काल के अंतर्गत जिस समय में अपन पैदा हुए उस समय में कई बार पैदा होकर मर चुके, उस पर्टिकुलर टाइम पर। मान लो कोई 6 बजे पैदा हुआ है तो उसी 6 बजे वो कई बार पैदा होकर मर चुका अनंतों बार। अब इसके आगे भाव परिवर्तन का वर्णन सुनिएगा, कितना भयंकर है वो। ये तो अभी तो 3 परिवर्तन हुए हैं, अभी उनसे भी बड़े बड़े 2 परिवर्तन तो बाकी है। भाव परिवर्तन का वर्णन अगली बार है।